लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवार ये आमदर्शन समारोह के अवसर पर विश्व के विभिन्न देशों से आए हुए तीर्थयात्रियों और विश्वासियों को संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में अपनी धर्म शिक्षा माला देने के पूर्व संबोधित करते हुए कहा।
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo intrapreso il viaggio nelle beatitudini e oggi ci soffermiamo sulla seconda. Beati quelli che sono nel pianto.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। हमने यीशु ख्रिस्त के धन्य वचनों पर अपनी यात्रा शुरू की है और आज हम दूसरे धन्य वचन पर चिंतन करेंगे। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। ग्रीक भाषा जिसमें सुसमाचार लिखी गई है, इस धन्य वचन की अभिव्यक्ति उस क्रिया में की गई है जो अपने में निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय है। वास्तव में धन्य हैं वे जो दुख से पीड़ित हैं, जो दुख के कारण अपने हृदय की गहराई में विलाप करते हैं। यह वह मनोभाव है जो ख्रिस्तीय आध्यात्मिकता की केंद्र बिंदु बनती है। प्रथम सदी के मठवासी धर्मचार्यों ने इसे पेंथोस की संज्ञा दी, अर्थात एक आंतरिक पीड़ा जो हमें खोलती है, जिसके फलस्वरूप हम ईश्वर और अपने पड़ोसी के संग एक संबंध में प्रवेश करते हैं। यह ईश्वर और अपने पड़ोसी के साथ एक नए संबंध की स्थापना करने हेतु हमारी मदद करता है। धर्म ग्रंथ में हम इस पीड़ा को दो रूपों में पाते हैं, पहला मृत्यु के कारण या किसी के दुख होने के कारण, वहीं आंसू आने का दूसरा कारण स्वयं के पाप है। जब हृदय ईश्वर और अपने पड़ोसी के प्रति किए गए अपराध के कारण घायल होकर रोता है, अतः यह दूसरे को इस भांति प्रेम करना है जो हमें उससे संयुक्त करता हो और दूसरा अपने दर्द को हमसे साझा करने हेतु बाध्य होता हो। कुछ लोग हैं, संत पापा ने कहा, जो दूर रहते हैं, अपने में एक कदम पीछे हटते हैं। इसके बजाय यह महत्वपूर्ण है कि दूसरे हमारे दिल में एक जगह बनाए। संत पापा ने कहा,
ho parlato spesso del dono delle lacrime e di quanto sia prezioso. Si può amare in maniera fredda?
मैंने कितनी बार आंसू को एक उपहार के रूप में व्यक्त किया है और यह कितना मूल्यवान है। क्या हम ठंडे रहते हुए प्रेम कर सकते हैं? क्या हम कार्यों या कर्तव्य से प्रेम कर सकते हैं? निश्चित ही नहीं। बहुत से दुखित लोग हैं जिन्हें सांत्वना की जरूरत है, लेकिन कई बार दुख के कारण हमें संरक्षण मिलता है, हम जागते हैं। तो वहीं दूसरे हैं जो अपने हृदय को पत्थर बना लेते और रोना भी भूल जाते हैं। हमें उन लोगों को जगाने की जरूरत है जो दूसरों के दुख को देखकर द्रवित नहीं होते हैं। संत पापा ने कहा, उदाहरण के लिए विलाप करना अपने में कड़वा मार्ग है, लेकिन यह जीवन और अति महत्वपूर्ण मूल्य के संबंध में हमारी आंखों को खोलने में हमारी मदद कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम यह एहसास करते हैं कि समय कितना छोटा है। इस धन्य वचन का एक दूसरा विरोधाभाषी अर्थ है अपने पापों के लिए रोना। यहाँ हमें इस बात को स्पष्ट करने की जरूरत है। बहुत से लोग हैं जो अपने में क्रोधित होते क्योंकि उन्होंने एक गलती की है, लेकिन यह घमंड है। वहीं दूसरे लोग हैं जो अपनी गलतियों के कारण अच्छे कार्य नहीं करने, ईश्वर से अपना संबंध विच्छेद होने के कारण रोते हैं। यह प्रेम नहीं कर पाने हेतु आंसू बहाना है, जो दूसरों के लिए अपने दिल में एक जगह होने की बात बयां करती है।
Qui si piange perché non si corrisponde al Signore che ci vuole tanto bene e ci rattrista il pensiero del bene non fatto.
यहाँ हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हम ईश्वर के प्रति अपने में वफादार नहीं रह पाए जो हमें अत्यधिक प्रेम करते हैं। हम इसलिए दुखित होते हैं क्योंकि हमने अच्छे कार्यों को नहीं किया है जो हममें पाप की अनुभूति लाती है। कुछ लोग कहते हैं,
ओ फेरितो कोलुई के आमो,
मैंने अपने प्रेम करने वाले को चोट पहुंचाया है। यह उनमें दर्द और आंसू लेकर आता है। यदि ऐसे आंसू हमारे जीवन में आते हैं तो ईश्वर की महिमा हो। संत पापा ने कहा, यह हमारे गलतियों की विषय वस्तु है जो कठिन लेकिन महत्वपूर्ण है। हम संत पेत्रुस के रोने के बारे में चिंतन करें जो उन्हें नया और एक सच्चे प्रेमी के रूप में परिणत कर देता है। आंसू बहाना उन्हें शुद्ध और नया बना देता है। पेत्रुस यीशु को देखकर रोते हैं। इसके विपरीत यूदस अपनी गलती को नहीं स्वीकारता और आत्महत्या कर लेता है। पाप को हम ईश्वर के उपहार स्वरूप समझ सकते हैं जहां पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। हम अपने से पाप को नहीं समझ सकते हैं। यह हमारे लिए कृपा है जिसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हे प्रभु, हमें कृपा दे जिससे हम अपने किए गए बुराई को समझ सकें। इस कृपा की प्राप्ति के उपरांत हम अपने में पश्चाताप के आंसू बहाते हैं। संत पापा ने कहा,
Uno dei primi monaci, Efrem il Siro, dice che un viso lavato dalle lacrime è indicibilmente bello.
प्राचीन काल के मठवासियों में से एक सीरिया के एफ्रेम कहते हैं कि आंसू से धुला चेहरा अपने में अवर्णनीय सुंदर है। हम उसमें पश्चाताप, आंसुओं और क्षमा की सुंदरता को देख सकते हैं। ख्रिस्तीय जीवन को हम सदा करुणा में सर्वोत्तम पाते हैं। वह अपने में विवेकी और धन्य है जो प्रेम में दर्द को स्वीकार करता है, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के द्वारा सांत्वना प्राप्त करेगा जो ईश्वर की कोमलता की निशानी है, जो हमें क्षमा करते और हममें सुधार लाते हैं। ईश्वर सदैव हमें क्षमा करते हैं। हम इस बात को कभी ना भूलें। वे हमारे पापों को, चाहे वे कितने भी कुरूप क्यों ना हो, हमेशा क्षमा करते हैं। कठिनाई हमारे साथ यह है कि हम क्षमा मांगते थक जाते हैं। हम अपने में बंद हो जाते और क्षमा की याचना नहीं करते हैं। हमारी कठिनाई यही है, लेकिन वे हमें क्षमा करने को तैयार हैं। यदि हम इस बात को याद रखें कि ईश्वर हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं करते और न हमारे पापों के अनुसार हमें दंड देते हैं, तो हम दया और करुणा में निवास करते और हम में प्रेम प्रकट होता है। प्रभु हमें बहुतायत में प्रेम करें जिससे हम मुस्कान में प्रेम कर सकें, घनिष्ठता में दूसरों के निकट रहें और आंसू में भी सेवा कर सकें। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Covicum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc ad usque in
secula. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
ऐ मेरे मन प्रभु की तो आराधना कर क्योंकि वो भला है उपकार किए है तुझ पर जब तूने नहीं जाना फिर भी गले लगाया क्योंकि यीशु भला है उपकार किए है तुझ पर जब तूने नहीं जाना फिर भी गले प्रभु की तू आराधना कर क्योंकि वो भला है
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं लीजिए प्रस्तुत है समाचार संत पापा फ्रांसिस ने 12 फरवरी के ट्वीट संदेश में यीशु के आशीर्वचन को अपनाने की प्रेरणा देते हुए कहा धन्य है वे जो शोक मनाते हैं उन्हें सांत्वना मिलेगी धन्य और बुद्धिमान है वह व्यक्ति जो दर्द को स्वीकार करता जो प्रेम से आता है क्योंकि वह पौत्र आत्मा की सांत्वना प्राप्त करेगा जो ईश्वर की कोमलता है जो क्षमा करते और सुधारते हैं संत पापा फ्रांसिस ने अपने दूसरे ट्वीट संदेश में अमेज़न पर धर्माध्यक्ष धर्म सभा के बाद प्रकाशित प्रबोधन को इंगित करते हुए कहा मैं इस प्रबोधन द्वारा समस्त विश्व को संबोधित कर रहा हूँ मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस भूमि के प्रति स्नेह एवं चिंता जागृत हो जो हमारा भी है और तीसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने अमेज़न के लोगों को सुने जाने और उनकी प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए जाने की कामना की उन्होंने कहा मैं एक ऐसे अमेज़न प्रांत का सपना देखता हूँ जो गरीबों मूल निवासियों और सबसे निम्न भाई बहनों के लिए संघर्ष करे जहाँ उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी प्रतिष्ठा बढ़े अमेज़न पर धर्माध्यक्ष धर्म सभा के उपरांत संत पापा के प्रेरितिक प्रबोधन को आज प्रकाशित किया गया प्रबोधन सुसमाचार प्रचार पर्यावरण तथा गरीबों की देखभाल का नया मार्ग प्रशस्त करता है संत पापा फ्रांसिस एक नए मिशनरी प्रेरणा की उम्मीद करते हैं तथा कलीसियाई समुदाय में लोक धर्मियों की भूमिका को प्रोत्साहन देते हैं वैटिकन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अलेसांद्रो दी सोती ने प्रबोधन का सारांश बतलाते हुए कहा है कि अमेज़न पर धर्माध्यक्ष धर्म सभा के उपरांत प्रकाशित प्रबोधन की शुरुआत इन शब्दों से की गई है प्यारे अमेज़न को विश्व के सामने इसके सारे वैभव नाटक एवं रहस्यों के साथ प्रस्तुत किया गया संत पापा ने पहले बिंदु पर इस प्रबोधन के अर्थ की व्याख्या की है जिसमें अमेज़न क्षेत्र के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के दस्तावेजों का हवाला दिया गया है इसके साथ ही इसमें अमेज़न से संबंधित कवियों की कविताओं को भी उद्धृत किया गया है जोर दिया गया है कि वे प्रतिध्वनियां व्यक्त करना चाहते हैं कि सिनर ने उन्हें प्रदीप्त किया है यह निर्दिष्ट करता है कि यह अंतिम दस्तावेज का स्थान लेना या उसे दोहराना नहीं चाहता जो आपको पूरे दस्तावेज को पढ़ने का निमंत्रण देता है इस आशा से कि समस्त कलीसिया समृद्ध हो एवं इससे परामर्श ले सके और अमेज़न कलीसिया स्वयं इसके इस्तेमाल के लिए प्रतिबद्ध हो संत पापा फ्रांसिस अमेज़न के लिए अपने सपने को साझा करते हैं जिसका भाग्य सभी को चिंतित करता है क्योंकि यह भूमि भी हमारी है इस प्रकार यह चार महान स्वप्न निरूपित करता है
सबसे गरीब लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा उत्साह से करना और अंततः ख्रिस्त समुदाय अमेजोन में समर्पित होने एवं साकार रूप लेने में सक्षम है। अमेजोन का पहला अध्याय सामाजिक सपने पर केंद्रित है। यह जोर देता है कि एक सच्चा पारिस्थितिक दृष्टिकोण भी एक सामाजिक दृष्टिकोण है, जो मूल निवासियों के अच्छे जीवन की सराहना करते हुए संरक्षणवाद के खिलाफ चेतावनी देता है। यह ऊंचे स्वर में अन्याय एवं अपराध पर आवाज उठाता है। यह याद दिलाता है कि संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने अमेजोन की पर्यावरण तबाही की पहले ही निंदा की थी। यह चेतावनी देता है कि मूल निवासी स्थानीय एवं बाह्य दोनों ताकतों द्वारा गुलामी के शिकार हैं। संत पापा के लिए आर्थिक क्रियाएं जो तबाही, हत्या, भ्रष्टाचार को ईंधन प्रदान करते हैं, उन्हें अन्याय एवं अपराध कहा जा सकता है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के साथ वे बारंबार दोहराते हैं कि वैश्वीकरण एक नया उपनिवेशवाद न बन जाए। संत पापा बहुत अधिक अन्याय सहने के कारण रुष्ट लोगों से क्षमा मांगते हैं। उनके लिए एकात्मकता एवं विकास के नेटवर्क की जरूरत है तथा इसके लिए वे राजनीतिक नेताओं समेत सभी से प्रतिबद्धता का आह्वान करते हैं। उसके बाद संत पापा सामुदायिक मनोभाव पर प्रकाश डालते हैं। वे याद दिलाते हैं कि अमेजोन के लोगों का मानवीय संबंध आसपास की प्रकृति से गहराई से जुड़ा है। अतः वे लिखते हैं कि जब उन्हें शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर किया जाता है, तब उनके जीवन को सचमुच उखाड़ दिए जाने के समान है। प्रबोधन के दूसरे अध्याय को सांस्कृतिक सपने को समर्पित किया गया है। संत पापा फ्रांसिस यह तुरंत स्पष्ट करते हैं कि अमेजोन को बढ़ावा देने का अर्थ इसे सांस्कृतिक रूप से उपनिवेश बनाना नहीं है। अतः वे उस छवि का समर्थन करते हैं जो उन्हें प्रिय है, अमेजोनी बहुतल। उन्होंने कहा कि आधुनिक काल के उपनिवेश का सामना करने के लिए मूल को बनाए रखना अति आवश्यक है। प्रबोधन में अंतर सांस्कृतिक मुलाकात की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। कहा गया है कि स्पष्ट रूप से अधिक विकसित संस्कृतियां भी प्रकृति से जुड़कर विकसित सांस्कृतिक धरोहर से सीख ले सकते हैं। इस प्रकार विविधता एक घेरा नहीं बल्कि एक सेतु है और यह पूरी तरह बंद मूल निवासी वाद को ना कहता है। तीसरा अध्याय पारिस्थितिकी सपने पर केंद्रित है, जो प्रेरितिक पत्र लौदातो सी से करीबी से जुड़ा है। परिचय में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेजोन में मानव प्राणी एवं प्रकृति के बीच गहरा संबंध है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर जिस तरह हमारी देखभाल करते हैं, उसी तरह हमें भाई बहनों की चिंता करना है। प्रबोधन के अंतिम अध्याय के अधिकांश भाग को कैथोलिक याचकों एवं विश्वासियों के लिए समर्पित किया गया है तथा कलीसियाई सपने पर प्रकाश डाला गया है। संत पापा निमंत्रण देते हैं कि अमेजोनी चेहरे के साथ कलीसिया का विकास किया जाए। अमेजोन में यह महान विशनरी घोषणा एक अत्यावश्यक घोषणा है। संत पापा के लिए यह काफी नहीं है कि सामाजिक संदेश लाया जाए, क्योंकि उन्हें भी सुसमाचार की घोषणा करने का अधिकार है। अध्याय के कुछ अंश को सांस्कृतिक अनुकूलन को भी समर्पित किया गया है। वैटिकन ने फरवरी से अप्रैल तक के संत पापा फ्रांसिस के कार्यक्रमों को प्रकाशित किया है। इसके अनुसार उनके कार्यक्रम इस प्रकार हैं: 26 फरवरी राकबूत की धम विधि, उस दिन 4:30 बजे संत अनसलम गिरजाघर से प्रायश्चित प्रोसेशन और 5 बजे संत सबीना महागिरजाघर में मिस्सा समारोह अर्पित किया जाएगा, जहां राग की आशीष एवं माथे पर राग लगाया जाएगा। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।